Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Yataiva Bimbam Vidaya Upaliptam Tejo Mayam Brajati Tatsudantam. Tadvatma Tattam Pramiksha Dehi. Eka Kritardo Bhavate Vita Shoka. ये प्रसंग चला आपका श्वेताश्वतर उपनिषद के दूसरा अध्याय का ये 14वां मंत्र है। हाँ, इसमें विचार क्या किया जा रहा है, तत्व ज्ञान का प्रभाव बतला रहे हैं। अन्य बात, आपने योग अनुष्ठान किया, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा किया, आप उसके द्वारा जो प्राप्त होने से जो सिद्धि है तत्वज्ञान का प्रभाव बताया जा रहा है। तत्वज्ञान से आपको क्या मिलेगा, इस प्रसंग में कल बतलाया जाते ही बिंबम मृदय का भी दृष्टांत दिया। यथा जिस प्रकार से मिट्टी के द्वारा उपलिप्त हुआ जो बिंब सुवर्ण चांदी आदि जो भी बिंब ले लो, इसमें तो एक ही दिया है, समझ लेना। उपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत् सुधांतम, सर उसको धो करके स्वच्छ करोगे तो कैसा होगा, तेजोमयम भ्राजते फिर चमकने लग जाएगा, नहीं समझे। सुधांतम सुधा सुधोतम है, समझ लेना। अच्छी तरह से धो दिया तो धोने का मतलब यह, सोना अलग है, कपड़ा अलग है, दर्पण अलग है, हर एक चीज की धोना अलग अलग वस्तु है, साधन भिन्न भिन्न है नहीं बात। भ्राजते चमकता है, तद्वा आत्मा तत्वम, तद वा मानी यहाँ वही शब्द है, वही यहाँ व्याकरण के दृष्टि से भाई को आप वा बन गया, तद वही आत्मतत्वम। हाँ, प्रसमक्ष देही उसी प्रकार का ही थे, वही निश्चयात्मक है, याद रखना, वही जो है ना वह निश्चयात्मक है। देही आत्मतत्वम समीक्षा, देही किसको कहते, व्याभिमानी को, जैसे गीता में है कि नहीं, देही नो अस्मिन यथा देहे कोमारम ध्रुवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। अन्य बात, देही माने देहाभिमानी, देह में आने वाला को देहाभिमानी कहते, जैसे गीता के 18वां अध्याय में कल वहां स्पिरिचुअल सेंटर में आया था एक प्रसंग। अनिवार्य जब जीवात्मा देह रूपी पिंजरा में आरूढ़ होकर के, समझ गए नहीं, ख्याल आए कि नहीं आपको, तो जीवात्मा जो है देह रूपी पिंजर में आरूढ़ होकर के देहाभिमानी बन करके कर्म के अनुसार, अच्छा बुरा कर्म के अनुसार भ्रमण करता है, भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, यंत्रारूढानि माया, यंत्र माने शरीर, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुआ जो जीव है अनिवार्य, तो सुबह सुबह कर्म उसको घुमाता है, जीवात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम रहा है, अथवा 84 लाख ध्वनि में जो घूम रहा है ना, कैसे घूम रहा है, कर्म घुमाता है, शुभा शुभा कर्म, अच्छा बुरा कर्म, तो जब तो अच्छा बुरा कर्म रहेगा तो जीवात्मा को जन्म धर्मांतर में, देह देहांतर में, लोक लोकांतर में भ्रमण करना ही पड़ेगा। लक्ष्य कहाँ से होगा? समझे, इस बात को यह बता रहे, तद्वय आत्मदत्तम देही प्रसमीक्षा प्रकर्षे न समीक्षा सम प्र उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, इक्षण शब्द है, तो प्रसमीक्षा अच्छी तरह से जान करके अर्थात आत्मतत्व का साक्षात्कार करके अनिवार्य। तो क्या करते, आत्मतत्व का साक्षात्कार हुआ तो क्या फल है? कृतार्थ हो जाता है। और कृतार्थ का मतलब क्या? कृत अर्थ प्रयोजनम दृश्य असो कृतार्थ, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है। तो जीव का प्रयोजन पूरा कब होता है? तुम्हारा प्रयोजन कहोगे कि भाई हमारा बेटा बेटी के शादी वादी करा देंगे तो हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा, अथवा धंधा खोल देंगे, मकान बना लेंगे, यानी भाई हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रयोजन कभी पूरा होता नहीं, याद रखना। लाभात लोभ प्रवर्धते है, एक लाभ हुआ तो दूसरा लोभ बढ़ जाएगा। तो कृतम अर्थम प्रयोजनम दृश्य असो कृतार्थ, हाँ कृतार्थ हो जाता कब? जब प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रयोजन तुम्हारे पास चार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के सुदुर्विद पुरुषार्थेषु मोक्ष एवं परम प्रयोजनम परम पुरुषार्थ, ये चार प्रकार के प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये तीन तो है तुम्हारा पुरुषार्थ, एक है परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष ही है। जब तक मुक्ति नहीं मिलती है जीवात्मा को तब तक इसका भ्रमण चलता रहता है, प्रयोजन पूरा नहीं होता। धर्म अर्थ तो चलेगा परंतु मोक्ष, मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? परम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मध्ये मोक्ष एवं परम पुरुषार्थ सस ब्रह्म ज्ञानात्। वो मोक्ष कैसे मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान से मिलेगा। सस ब्रह्म ज्ञानात्, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। रीते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मोक्ष मिलेगा, और कोई साधन नहीं है मुक्ति का। अनिवार्य, इसलिए वेद के अंतर मंत्र आता वेदमेदम आदित्यवर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा अधिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। देखा, वेदमेदं पुरुषा महान्तम आदित्यवर्णम तमस परस्ता, ऋषि उद्घोष करते हैं, ढिंडरा बैठते, वेदमेदं, मैंने इसको जान लिया। ये किसको जाना का? पुरुषम, वो पुरुष कैसा है? पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुष का मतलब व्यवहार में जो स्त्री पुरुष आदि ये व्यवहार कैसा नहीं, पूर्णत्वात् पुरुष, पुरुषु शेतेति वा पुरुष, शरीर रूपी पुरुष में शयन करता है तो उसको पुरुष को उसको पुरुष कहते, पूर्व माने शरीर, तस्मिन् शेतेति पुरुषः, पुरः शरीरम तस्मिन् शेतेति पुरुषः, इस शरीर रूपी पूर्व में शयन करता है, इसीलिए इनका नाम ऐसा पुरुष को हमने जान लिया। वो कैसा कहते? आदित्यवर्णम, आदित्यवर्णम सूर्य के समान, तमस परस्तात् अज्ञान रूपी अंधकार से, अविद्या रूपी अंधकार से परे है। तो तुमने जान लिया तो क्या हुआ, इसका फल क्या है? तब कहते जानने का फल तमेव विदित्वा अतिमृत्युम एति ही, उनको जान करके ही मृत्यु अतिक्रांत एति गच्छति, उसको जान करके ही मृत्यु के पार जा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या तो क्यों हम योग करेंगे, कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उपासना करेंगे, भक्ति करेंगे, पराना करेंगे, साधन तो बहुत से है, कर्म से नहीं होगा न कर्मणा। हाँ, काम संतान परिवार बड़ा करेंगे, हाँ, कर्मणा प्रजया मुक्ति धन न सताम नहीं, कर्मणा प्रजया धन न मुक्ति न भवितुमर्हति, कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्मणा न प्रजया, बड़ा परिवार हो गया ये सब मिलकर के हमको मोक्ष दिला देगा, स्वर्ग में भेज देगा, हाँ नहीं, क्यों नहीं होगा। हमारे पास चार बेटा है, कंधा लगाएगा, राम नाम सत्य है कह करके ले जाएगा, जला देगा, धक्का देकर गिरा देगा स्वर्ग में, ऐसे मारेगा तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। कितना बेटा है, एक है, तो फिर क्या धक्का देगा वो, तो फिर उसको मार डालोगे, अकेला तुमको क्या उठाएगा वो, अकेला आज तक क्या उठाएगा इनको बताओ। कम से कम चार तो चाहिए कंधा देने के लिए, काम का ले जाता है, राम नाम सत्य है तो कह करके स्मशान तक तो पहुंचाना चाहिए ना, एम्बुलेंस ले जाएगा, एम्बू ले जाएगा, कहते हैं ना हमारे चार बेटा है, कंधा देने के लिए बहुत है, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे चार है तो पांच हमार तो चाहिए ना तुमको, हंडा पकड़ने वाला बेटा का बेटा पकड़ेगा, है नहीं तो कौन पकड़ेगा। नान्य बनता विद्यते नाया मोक्ष आय, तो कर्म के द्वारा मोक्ष नहीं मिलता है। कर्मणा बद्धते जंतु हो, कर्म के द्वारा जीव बंधे जाते हैं, विद्या से विमुच्यते, मुक्ति कैसे मिलती है विद्या से, कर्म से नहीं, योग से बोले नहीं, कर्म चित्त शुद्धि के लिए है, योग चित्त को स्थिर करने के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। योग करोगे तो अंतकरण की चंचलता मिटेगी, स्थिर होगा। अभ्यास करोगे ना, अभी पढ़े आएगी कि नहीं जब प्राणायाम ध्यान धारणा, भूल गए ध्यान धारणा आए ना, अभी अनुलम करो, प्रतिलम करो, भस्त्रिका करो, सूत्र करो, फलाना करो, ढंका करो, आप विभिषणा करो, कुछ भी करो, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। क्यों, ये कहते हैं भ्रीते ज्ञाना न मुक्ति ही, बिना ज्ञान से मुक्ति होने वाली नहीं है, याद रखना है नहीं बात। ज्ञानादेव कैबिल्यम मोक्ष मित्य कैबिल्य कहते, केवल भाव कैबिल्य मोक्ष, मोक्ष मिलेगी तो कर्म से नहीं, उपासना से नहीं, अनिवार्य योग से नहीं, पलना से नहीं, तो किससे होगा, केवल ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ज्ञान कहो, ब्रह्म विद्या कहो, आत्मज्ञान कहो, आत्मविद्या कहो, बात एक ही आई हो। हाँ, उपासना करोगे, उपासना किसकी उपासना कर रहे, कौन से देवता की उपासना कर रहे हो, किस लिए कर रहे उपासना। हाँ, वो तो आपका वो शरीर को बनाने के लिए तो अभ्यास, जोगादि अभ्यास करो, शरीर हल्का हुआ अभी आया ना, हाँ शरीर कैसा होगा, अभी शरीर को हल्का करने के लिए क्या क्या का उपकार विहार ऐसे कर्म सुख ऐसे परमार्थ के रास्ता में चलने के लिए शरीर कैसा होना चाहिए। हाँ ये सब चाहिए, हाँ मदद क्यों नहीं करेगा, ये तो परमार्थ के रास्ता में जो है साधन है, परंतु लक्ष्य जो है ना, है नहीं बात। तो देखो ना, छांदोग्य उपनिषद में या देवर्षि नारद जी सनकादि ऋषियों के पास जाकर के रोने लगा, सोहम भगवत सोसा में त्वम माम शोकश परिश परम पारम तारहे तो आया कि नहीं। तो नारद जी से पूछा, तुम इतना दुखी क्यों, माल लटका करके क्यों भाग रहे हो? बोले मैं क्या करूं, मैं दुनिया भर के विद्या पढ़ लिया परंतु मैं आत्मा को नहीं जाना। क्या क्या विद्या पढ़ा बताओ? क्या बताया? 18 विद्या है। कितना बड़ा क्या है 18? जानने मालूम है ना, अंगाने चतुर्वेद मीमांसा न्याय विस्तर पुराणाम धर्म शास्त्र विद्या ये चतुर्दश आयुर्वेद धनुर्वेद अथर्वस्तथा अर्थशास्त्र चतुर्थम से विद्या अष्टादश। चार भेद अंगाने चतुर्वेद षडंग चार भेद कितना हुआ? 10 हुआ। पुराणम धर्मशास्त्र से पुराणम धर्मशास्त्र से और अर्थशास्त्र ऋग्वेद या आयुर्वेद धनुर्वेद और आयुर्वेद धनुर्वेद और है ना ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष है ना, आयुर्वेद धनुर्वेद अथर्ववेद चार वेद आया ना, नहीं ये उपवेद है, आयुर्वेद धनुर्वेद अथर्ववेद ये अलग है। ये अलग है ऋग जजु साम अथर्ववेद, अथर्ववेद तो उपवेद है ना, वेदों का एक 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 शाखा हो तो उपवेद कहते उसको, उपवेद कहते हैं। आयुर्वेद धनुर्वेद कथा अथर्ववेद सी निरुक्ति है, वैदिक व्याकरण है, इसे अंग शास्त्र अंग शास्त्र अर्थशास्त्र पुराणम से अर्थशास्त्र है, पुराण है, सब है नहीं बात। ये 18 विद्या मैंने पढ़ा परंतु मेरा शोक नहीं गया, तो क्या करना चाहिए? बोला हमने सुना आप जैसे ऋषियों से कि आत्मज्ञान से तरते शोकम आत्मभिक, आत्मज्ञानी शोक सागर से पार जाता है, तो आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश कीजिए। स्वम भगवत सुस्वामी तम माम शोकस्य परम पारम तारयतु, आप मेरे को शोक सागर से पार कीजिए। तो कहने का मतलब है जो शोक सागर से पार जाना है, शुच्यते इति शोकः शोक, तो शोक का तो बहुत अर्थ होता है, किंग विषयक शोक है आपको, आप शोक कर रहे हो, कोई मर गया शोक कर रहे हो, आपने बेटा नालायक निकाल गया शोक करते हो, पत्री पुत्री नालायक निकाल गई शोक करते हो, धन धन बर्बाद हो गया शोक करते हो, है बेटा मूर्ख निकाल गया शोक करते हो, अनपढ़ हो गया शोक करते हो, घर से चला गया शोक करते हो, मर गया शोक करते हो, कितना बस कौन से विषय में शोक करते हो? शोक का तो स्थान शोक स्थान सहस्राणी भय स्थान शतानी च दिवसे दिवसे आविशंति मूढ़ा न पंडिता। संसार में जो मूर्ख होते हैं ना, वो रोज रोज रोता रहता है, शोक करता रहता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, क्या करूं क्या नहीं करूं। परंतु विद्वान जो समझदार होते हैं ना, वो शोक नहीं करता, ये तो आने जाने वाला संसार है, ये तो होता ही रहेगा। ये किस किस के शोक का? मुर्दा के लिए, काशी में जाओ एक मणिकर्णिका 24 घंटा मुर्दा जलता रहता है, तो यहां बैठे बैठे रो मर गया रे मर गया। तुम्हारा आंख में आंसू कितना बहाओगे तुम। और आपने ही जहां देखो परिवार में जो कलेरा होते ना, कलेरा में एक एक साथ 7-8 आदमी मर जाता परिवार का, कलेरा हैजा, तब किसने के लिए सुख करोगे? तो ये पहले के लिए तो सुख करोगे, दूसरा के लिए, तीसरा से कहो जाओ अब हो गया, आगे रोने की जरूरत नहीं है। वो मांस मसाना है वहां जलता रहता है। कहां? मणिकर्णिका। इसी का बड़ा महत्व बतलाया शंकराचार्य ने, साव काशी मणिकर्णिका चो। नहीं, वो अलग है। हरिश्चंद्र घाट में इतना नहीं जलता है, हरिश्चंद्र घाट तो 1.5 किलोमीटर दूर है मणिकर्णिका से, 1.5 किलोमीटर दूर है। हम तो रोज ही वहां घूमते थे मणिकर्णिका से हरिश्चंद्र घाट, तो हम पास में रहते थे काशी में। तो शोक स्थान सहस्राणी आए प्रकाश भाई, पहले प्रकाश दिया करो, सांधर बैठा है सब, दीनाबहन के साथ बैठे हैं ना, अभी शेयर मार्केट गिर गया ना कल, इसीलिए रोना, थोड़ा शोक करके आया। दीनाबहन है ना, वो शेयर मार्केट के आए, तो उनका शोक, उसका काल नुकसान हुआ, लाखों का हुआ होगा। अच्छा नहीं, तो उनका तो शोक होगा ना। तो ये और शोक की बात चल रहा है, नारद जी शोक कर रहा है। नारद जी इतना बड़ा विद्वान भक्त है, अभी नारद जी का कई बार शोक हुआ हो, अंतिम शोक हुआ ये आत्मा के अज्ञान से, आत्मज्ञान नहीं होने से, है नहीं बात। वो सनक आदि ऋषियों ने उनको आत्मज्ञान दिया, शोक निवृत्ति किया, शोक से छुड़ाया है। तो कहने का मतलब, शोक जो है ना, एक आत्मा के अज्ञान से शोक होता है और आत्मज्ञान से शोक मिट जाता है। जद अज्ञाना जगत भाति, जद ज्ञाना भासते नहीं। जिसके अज्ञान से जगत भासता है और जिसके ज्ञान से जगत भासता नहीं, जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, अनिवार्य रस्सी के ज्ञान से नहीं भासता, ऐसे तुम्हारा आत्मज्ञान से, आत्मा के अज्ञान से